श्रावणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियेत भगवत्तद्या तन्मन्ये अदितमुत्तमम्। श्रीप्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियेत भगवत्तद्या तन्मन्ये अदितमुत्तमम्। हर रोज 9 दिन से ये श्लोक चल रहा है, किसी को कंठस्थ नहीं हुआ। श्री प्रह्लाद उवाच, प्रह्लाद महाराज ने कहा, श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, विष्णु हो भगवान विष्णु का, अन्य किसी का नहीं, स्मरणम स्मरण करना, पाद सेवनम चरणों की सेवा करना, अर्चनम पूजा करना, षोडशोपचार अथवा 16 प्रकार की साज सामग्री द्वारा, वंदनम स्तुति करना, दास्यम दास्य बनना, सख्यम सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाना, आत्मनिवेदनम अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित करना, इति इस प्रकार पुंसार्पिता भक्त द्वारा अर्पित विष्णु भगवान विष्णु पर, अन्य किसी पर नहीं, भक्ति भक्ति चेत यदि नवलक्षणा 9 प्रकार वाली क्रियेत करना चाहिए, भगवती भगवान में अद्धा प्रत्यक्ष या पूर्णतः, तत् वह मन्ये मैं मानता हूं अधिकतम विद्या अध्ययन करना तो तमाम सर्वोच्च। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमल की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा अपने उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मा उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की ये नौ विधियों को स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन नौ विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो आज के अंतिम चरण जो आत्मनिवेदन है इसके बारे में हम कुछ सुनेंगे। जब किसी में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती तो वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है और हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। यह अवस्था आत्मनिवेदनम है। ऐसा भक्त उस गाय के तुल्य है जिसकी रखवाली उसका स्वामी करता है। अपने स्वामी की देखरेख में गाय को अपने उदर पूर्ति की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसी गाय अपने स्वामी के प्रति सदैव समर्पित रहती है और कभी भी मनमाना कार्य नहीं करती, केवल स्वामी के लाभ के लिए ही हर कार्य करती है। इसलिए कुछ भक्त भगवान को शरीर समर्पण को आत्मनिवेदन मानते हैं, और जैसा कि भक्ति विवेक ग्रंथ में बतलाया गया है कि कभी कभी भगवान को आत्मा का समर्पण आत्मनिवेदनम कहा जाता है। आत्मनिवेदन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का है। द्वारका में रुक्मिणी देवी के आचरण में भी कभी कभी आत्मनिवेदनम पाया जाता है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति में जो समर्पित हुआ है वो भगवान का भक्त विशुद्ध भक्ति करने वाला कहा जाता है। समर्पण क्या चीज है? समग्र अर्पण इति समर्पण, सब चीजों समग्र, यानी कि हमारी तथाकथित कहने वाली जो चीजें हैं, ये शरीर भी चीज कहलाती है, आत्मा भी चीज कहलाता है, मन बुद्धि अहंकार भी चीज कहलाती है, हमारे व्यक्तित्व में सारे जो विभाग हैं वो सब अपने विस्तार बताए गए हैं। तो ये सब हमने पाए हैं, किसी की कृपा द्वारा पाए हैं, जिनसे पाए हैं इनको समर्पण करना होता है, समग्र अर्पण। ये नहीं कि मैं अपना अहंकार बनाए रखो और बाकी की चीज दे दूं। यहां बलि महाराज का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। वामन देव ने 3 कदम भूमि मांगी, 2 कदम में तो सारा विश्व ले लिया, 3रा कदम रखने की जगह भी नहीं रही। जहां जहां भगवान की संपत्ति पर यदि हम पांव भी रखते हैं तो वो जगह भी दे देनी चाहिए। तो बलि महाराज ने तो वहां तक तो सारा अर्पण कर लिया था, एक ही चीज बाकी थी जो जमीन पर नहीं रहती है, जो शरीर से ऊपर सब भाग में होती है। वो तो प्रहलाद महाराज की मदद से बलि महाराज ये भी अपना सिर भगवान के चरण कमल रखने के लिए दे दिया। तो इस तरह समग्र अर्पण वो कर रहे हैं, इसलिए विशुद्ध भक्त की स्थिति में आते हैं। हम यदि वाणी अर्पण करते हैं तो क्या मन क्यों नहीं अर्पण करते? मन में हम अपनी इच्छाएं बनाए रखते हैं और भगवान को ऊपर ऊपर से गुणगान गाते रहते। मन में कुछ और चलता है, मन भी समर्पण करना चाहिए। वो भगवान के चरण कमल में समर्पण करते हैं अम्बरीश महाराज, तो इसलिए उनका भी उदाहरण दिया है। समय कृष्ण पदारविंदयो वंचांसी गुणानु हरिर गुणानु वर्णन। तो समर्पण के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हमें 6 चीज आवश्यक होती है, तब समर्पण कहा जाता है। षड्विध शरणागति, शरणागति में भी आप देखोगे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे वो देखना है, इसलिए 6 प्रकार से उन्होंने समझाया कि जो हमारा हमारी कृपणता है, कृपणता यानी कंजूसाई, यानी कि देने के लिए कुछ बताते हैं, छुपाने के लिए भी बनाए रखते हैं, तो वो कृपणता कहलाती है। तो शरणागति का दिखावा होता है, अंदर अंदर कुछ और छुपाए रखते हैं। तो षड्विध शरणागति में पहले शरणागति की तैयारी है कि नहीं, वो तो देखना चाहिए। क्या शरणागति की महिमा कमजोर करने के लिए ही करते हैं या कुछ और? इसीलिए यदि तैयारी है तो क्या भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं? विश्वास में भी 2 चीजें आती हैं, एक हमारी रक्षा करेगा और दूसरा हमारा पोषण करेगा। ज्यादातर सभी को ऐसा कार्य व्यस्त होना चाहिए जिसके द्वारा कुछ उपार्जित बना रहे, वो द्रव्य हो तो भगवान की लक्ष्मी कहलाती है और भगवान की सेवा में जा सकती है। भगवान की सेवा में प्रचार करने वाले को तो लक्ष्मी मिलती ही रहती है, तो उसमें भी यदि ये भगवान का भक्त है, शरणागति ले रखा है, तो लेकिन वो कितना छुपाता है, 400 बीसी करता है, उसका क्या है? षड्विध शरणागति, शरणागति की आवश्यकता समझने वाला ये दिखेगा कि भगवान द्वारा मैं सुरक्षित हूं और भगवान की कृपा से ही मेरा पोषण भी रहता है। इसीलिए वो निश्चित रूप से भगवान के अनुकूल कार्य करेगा, प्रतिकूल कार्य को छोड़ देगा, क्योंकि सब भगवान की तरफदारी वाला काम है। इतने सारे गुण होते हुए उसके मन में कोई अहंकार नहीं रहता और झुक जाता है, यानी कि विनम्रता आती है। निक्षेप, अपने को हमेशा प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नामानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के हमेश के कीर्तिगान में वो रुका रहता है, चाहे वो श्रवण में हो, कीर्तन में हो, स्मरण में हो, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम में, सभी में भगवान की तरफदारी वाला दिखता है। तो हम इन दो चीजों पर ज्यादा भार रखते हैं, गारंटी कहाँ है कि हमारा हम बने रहेंगे और हमारा पोषण होता रहेगा। कमाने की कोई इच्छा नहीं, सब कुछ कमाया था, छोड़ छोड़ के आ गए हैं। तो द्रव्य इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन सुरक्षा का साधन है कि नहीं और पोषण का साधन है कि नहीं, वो भगवान की भक्ति में एक अनूठा विश्वास करता है। क्योंकि भक्ति स्वयं, भक्ति ही परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैक काल, एक त्रिकाल त्रैश, यानी कि तीनों एक साथ साथ अनुभव कराने वाली है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो शरणागति में है, परेश का अनुभव भी कराने वाली है और तीसरा विरक्ति भी देने वाली है। भक्ति ही परेश अनुभव विरक्ति त्रिक काल, त्रि यानी कि तीनों एक साथ में एक काल प्रपद्यमानस्य क्षुत तुष्टि पुष्टि क्षुत, यानी कि जो क्षुधा यानी जो भूख है, तो रशति अनुघासम, जैसे व्यक्ति भूखा है और उसके हाथ में कुछ खाना आ जाता है तो खाते ही उसको संतोष होता है, खाते ही उसकी पुष्टि भी होने लगती है और खाते ही और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देता, विरक्त हो जाता है। एक बार खा लिया फिर से आप बिठाओ, अरे और खा लो, नहीं 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 काफी, क्योंकि संतोष शांति की आभा होती है। ये तीनों का अनुभव भूखे व्यक्ति को होता है एक साथ साथ में। तो भगवान की विशुद्धि ये तीनों, यानी कि भक्ति की पराकाष्ठा जो शरणागति में है उसका अनुभव इस तरह होता है। भक्ति में हमेशा आप ये व्यवस्था पाओगे, ऐसा नहीं कि वृंदावन में कोई भूखा जाता है, भूखा सोता है, क्योंकि ये तीनों अनुभव कराने वाली बात है। लंगर तो लगते ही रहते हैं, जहां देखो सब भगवान भोग लगाते हैं, भोजन पकाते हैं, सबको खिलाते हैं, हाँ कूपन देकर भी खिलाते हैं। सही, और कूपन वाले भी जानते हैं कि सबको खिलाना चाहिए, तो एक कूपन का दो टुकड़ा करके भी खाते हैं, खिलाते हैं, या अपनी कूपन व्यक्ति को दो दो कूपन मिलती है, कभी एक दूसरी जगह से भी मिलती है, तो क्या करें, दूसरों को दे दें, हमें तो मिली, तू जा, तुझे नहीं मिली है। हाँ, ये कोई भूखा नहीं जाता। भक्ति का अनुभव शरणागति में है, हम कितनी मात्रा में शरणागत हैं, इसलिए जीव गोस्वामी इस पर विवेचन करते हैं और बताते हैं कि देखो भक्ति और तुष्टि, भक्ति और तुष्टि, तुष्टि पुष्टि क्षुत आप चानुघासम, पुष्टि बाद में आती, पहले तुष्टि आती है। तो भक्ति और तुष्टि संतोष, ये दोनों एक सरीखे हैं। दूसरी बात परेशानुभव और पुष्टि, दोनों एक सरीखे हैं, और विरक्ति और क्षुत, क्षुत आप मीन्स वो भूख मिट जाती है तो वो विरक्ति के बराबर है। इस तीनों पर्याय है, एक दूसरे के संबंध में है। तो कहते हैं कि भक्ति का अनुभव संतोष देता है, संतोष प्रसन्नता का लक्षण है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहैतुकी और अप्रतिहता शरणागत के लिए बहुत आवश्यक है। ययात्मा सुप्रसिद्धति, तो भक्ति की प्रसिद्धि ही प्रसन्नता में है। यदि हम भगवान जो आध्यात्मिक विशुद्ध सत्व की स्थिति पर है, अधोक्ष जो कहलाते हैं, जो अपनी इंद्रियातीत है, इंद्रियों से गम्य नहीं है, ऐसे हैं भगवान, तो ये भक्ति का अनुभव तुष्टि जैसा है, खाते ही तुष्टि होने लगती है। तो ये नवधा भक्ति का आचरण करते ही हमें भक्ति द्वारा संतोष मिलने लगता है, आनंद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे संतोष की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती है। हर एक भाग को खाने से, एक एक खाते हैं, सारा तो नहीं उठाते हैं, हमारे हमारे खाने में से कोई ले जाएगा ऐसा तो कोई डर नहीं है, सबको मिल रहा है, हम देखते हैं। लेकिन जो संतोष की आभा है, जो संतोष मिलता है भक्ति करने से, वो तुष्टि कहलाती है, वो भक्ति की सिद्धि बताती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते कि शुरुआत में आप साधना भक्ति भी करो फिर भी आपको संतोष लगता है, तभी तो आगे बढ़ते हैं। आनंद संतोष का लक्षण है, वो प्रसन्नता या आनंद हमें प्राप्त होता है। दूसरी ओर देखें कि भगवान का अनुभव और पुष्टि के अनुसार भगवान भी हमारे पुष्टि करने वाले हैं, हमें हमारा रख रखाव कौन कर रहा है, सारी व्यवस्था उन्होंने की है, तो अवश्य उस पर हम आश्वस्त रहते हैं कि देखो भगवान का काम और पोषण का काम दोनों एक है। भगवान सर्व के पोषक है और खाना भी पोषण है, तो पोषण करता, पोषण करने की जो सारी प्रवृत्ति है वो भगवान की है, इसलिए भगवान का अनुभव और पोषण का अनुभव सरिखा बताते हैं। और तीसरा ये विरक्ति, विरक्ति का अनुभव, दूसरी और खाने की कोई इच्छा नहीं रहती, जहां पुष्टि भी हो गई तुष्टि भी हो गई और जो विरक्ति आती है यानी कि और खाने की इच्छा नहीं, तो क्षुत आप, क्षुत यानी कि जो क्षुधा है भूख है वो ऐसी मिट जाती है कि दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ पेट खाली होगा तब की बात देखी जाएगी, लेकिन अभी का तो प्रश्न मिट गया। हमें तात्कालिक अनुभव कराने वाली भक्ति है, किसी भी यानी कि नौ प्रकार की भक्ति में जो जुटा रहता है वो व्यक्ति हमेशा शुद्ध भक्त कहलाता है, हमेशा जुटाने वाला। तो ये आत्मनिवेदन के लिए काफी आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अपने शरीर को साधन मानकर चल रहा है, स्वयं तो आत्मा है, इसलिए आत्मा को शरीर का स्वार्पण कर देना चाहिए, उसे आत्मनिवेदन कहते हैं। शरीर को भी आत्मा के नाम से संबोधन किया जाता है, मन को भी आत्मा के नाम से संबोधन किया जाता है, और स्वयं आत्मा को भी आत्मा के लिए, अरे भगवान को भी आत्मा के नाम से कभी कभी संबोधन करते हैं, क्योंकि भगवान का अंश सभी। लेकिन जहां तक व्यक्ति यानी कि एक जीव भगवान का विशुद्ध अंश है लेकिन विभिन्न अंश हो गया है, भगवान की गुणवत्ता वाला अंश है लेकिन विभिन्न अंश है, वो अलग पड़ा, यानी कि वो हमेशा भूखा रहेगा, वो हमेशा पोषण के लिए जुड़ेगा और उसको कोई संतोष नहीं होगा। ये सर्वप्रथम गलती कहलाती है, वो जो भगवान स्वयं कहते इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष द्वारा ये अंश भगवान से अलग हुआ है, ये विभिन्नांश कहलाता है। जो भगवान से अलग नहीं है वो स्वांश होते हैं, स्वांश अब वो भगवान से छोटे हुए भी भगवान के साथ संलग्न रहते हैं, वो अलग नहीं, भगवान की इच्छा को ही पूरी करने के लिए आते हैं। स्वांश में भगवान के अवतार आते हैं, विशुद्ध भक्त भी कभी कभी जगत के तारण के लिए स्वांश बनकर आते हैं। जो भगवान के नित्य पार्षद है वो नित्य मुक्त बन गए हैं, इनको भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनकी जो विभिन्न अंश की स्थिति है वो पिघल गई है, विभिन्न अंश की स्थिति पिघल गई है, और भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने वाले की एकात्मता बनी रहती है, इसलिए स्वांश न होते हुए भी भगवान के अति प्रिय, भगवान की सेवा में नित्य पार्षद के रूप में रहते हैं। और जब विभिन्न अंश की बात करते हैं तो विभिन्न क्यों बने, अलग इच्छा और वो भी द्वेष के कारण, इसके लिए यदि भक्ति का मार्ग दिया जाता है और भक्ति में खास करके श्रवणम करके ही वो कीर्तन करने की भावना करेगा, बिना श्रवण किए कीर्तन का कोई अर्थ नहीं है। अंत दर्दत्वा हमें स्मरण बनाना है, लेकिन श्रवण किए बिना कीर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि ये बुनियाद है भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम मीन्स अन्य किसी को नहीं, सिर्फ विष्णु भगवान को या विष्णु तत्व को, कृष्ण भगवान को। विष्णु तत्व कृष्ण से ऊर्जित है, तो कृष्ण तत्व वेत्ता बनने की आवश्यकता चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। इसीलिए निर्धारण पहले यह करना है कि हम स्मरणम किसका करें। सर्वोच्च स्थिति विष्णु स्मरणम यानी कि कृष्ण स्मरणम, कृष्ण स्मरणम। तो शरण की भावना इस प्रकार भगवान की तरफदारी वाली सेवा करने से टिकती है। सिर्फ शरण ले रखी है, शरण ले रखी है, लेकिन हम सेवा नहीं करते हैं तो गए काम से। इसलिए ये षडविध शरणागति की प्रतिष्ठा है और भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए अनुसार समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम अधिकृत मंत्र है, एक विशुद्ध भक्त ने दिया है, लेकिन बिना सेवा ये शरण नहीं टिकेगी। हर चीज को स्वार्पण करने के लिए यानी कि अपने पास नहीं रखना, वो रूप गोस्वामी ने सिखाया है कि निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। भगवान के संबंध में सब कुछ चीज का स्वार्पण करना, वही तो आत्मनिवेदन है। तो जब तक हम अपने संबंधे नहीं निर्बंधे, लेकिन कृष्ण संबंधे मेरे लिए नहीं कृष्ण के लिए है, ये कृष्ण की शक्ति है तो कृष्ण की सेवा में उपयोग करती है, सही। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, ये युक्त वैराग्य की भावना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैराग्य आंतरिक होता है जबकि त्याग बाह्य होता है। त्याग को रिनंसिएशन कहते हैं और वैराग्य को डिटेचमेंट कहते हैं। जहां अनुराग नहीं है वो अनुराग का विरोधी वैराग्य है, और त्याग ऊपर से खोखला होता है। यदि त्याग में वैराग्य नहीं है तो त्याग टिकेगा नहीं, खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। इसीलिए यदि वैराग्य है तो वो आंतरिक होता है और सब कुछ भगवान के संबंध में वो अपने पास जो जो है उसका उपयोग करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये युक्त वैराग्य की भावना ये विशुद्ध भक्त में होती है और बनी रहनी चाहिए। उसे विरक्ति का महत्व नहीं समझा जाएगा। लोग विरक्ति से बहुत घबराते हैं, वो त्याग और विरक्ति में कोई भेद नहीं समझते। अंततगत्वा ये मेरा नहीं है तो, लेकिन मेरी पास है उसका क्या है, भगवान की सेवा में उसका यथोचित उपयोग करना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरे पास है। तो विरक्ति हाँ और त्याग में इतना बड़ा अंतर है। शुष्क त्याग, खोखला त्याग से क्या फायदा? लोग घर बार छोड़ के आते हैं, त्यागी बनने के लिए आते हैं, लेकिन यहां भी काफी परेशानी अनुभव करते हैं। क्योंकि सेवा का माध्यम चला नहीं जाना चाहिए। यदि चला जाता है कि जो सेवा नहीं है तो अपना वृंदावन में रहना भी बेकार है, वैराग्य खुल्लम खुला हो जाता है। हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना ये भक्ति का नियम है। प्रेममयी सेवा, तो भक्ति और सेवा को अलग नहीं कर सकते, भक्ति और प्रेम को अलग नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हमें जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कितने ढंग से भगवान को शरणागत है। भगवान तो कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हर एक व्यक्ति को कहां महामाया की ताबेदारी स्वीकारनी पड़ती है और उसके कहे अनुसार काम करना पड़ता है, चाहे उसमें तीन गुण ही काम क्यों नहीं कराते। वहां तक की समझ भी सुरक्षित रखती है आत्मा को, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे नाचना पड़ता है गुणों द्वारा, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन परवशता से मुझे काम करना पड़ता है। गुणा गुणेशु वर्तयन्ते इति धारयन्। भौतिक अवस्था भी तीन गुणों से बनी है, मेरा मन भी तीन गुणों से बना है, मैं क्या करूं? लेकिन भगवान आपको भूलू नहीं, आपके पीछे पड़ा रहा हूं। यानी कि शरीर जिसका स्वार्पण करने वाले हैं वो कर सकते हैं, इसमें शरीर में और शरीर के द्वारा मन बुद्धि और अहंकार में भी जो जो इच्छाएं पड़ी रही है वो भी भगवान को अति तीव्र भक्ति से समर्पित करनी है, वो एक सिद्धांत बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा है कि अकाम वा सर्व काम ही मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति क्या है? जो हमें भगवान को शरणागत होकर भी हमारी भौतिक भावना अंदर से छिपी रही है, तीन गुणों द्वारा मिश्रित है, फिर भी कुछ नहीं, तीव्र भक्ति आपकी ये सारी भावना पूरी करेगी। वैकुंठ मिलेगा, चार प्रकार की मुक्ति मिलेगी, इसमें सारी भावना आ जाएगी, आप संतोष पाओगे जान, लेकिन भगवान का ये अनुभव कराएंगे, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं कराएंगे। वो गुरु वृंदावन की स्थिति है, और मनुष्य के लिए भगवत धाम जाकर, जहां एक बार जाकर वापस आने की आवश्यकता नहीं, ये विशुद्ध शरणागति जो आत्मनिवेदनम है उसको लागू होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। भगवान के साथ अंतरंग बने रहना, इनके स्वभाव अनुसार राग बनाए रखना, अटैचमेंट बनाए रखना, और भक्ति करना, रागानुग भक्ति कर लेना, वो निरंतर अवस्था है जो शरणागति में होती है। शरणागति के बाहर की ये कोई व्यवस्था नहीं है। पहले शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुष, वो मुक्ति के बाद आती है। मुक्ति के पहले शरणागति नहीं आती, और जैसे ही शरणागत हुए तो विशुद्ध भक्ति का रस चखने को मिलेगा। तो आत्मनिवेदन में कई लोग अपने शरीर को भगवान की सेवा में उपयोग करना मानते हैं, और कई आत्मा को भगवान की सेवा में निरंतर स्वार्पण करना चाहते हैं आत्मा का। वो जानता है कि मूल रूप आत्मा है, यानी कि ये शरीर से पहले मुक्त हुआ ही होना चाहिए, देहात्म बांध से मुक्त हुआ ही होना चाहिए, तभी तो आत्मा को भगवान की सेवा में लगाएगा। चाहे श्रवणम क्यों ना हो, कीर्तनम क्यों ना हो, आत्मा को छूने चाहिए। भक्ति की सारी प्रक्रिया आत्मा की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम अपने देह को ट्रेन अप करते हैं, देहात्म बुद्धि है तो कान जरा ध्यान से सुन, हाँ, लेकिन आत्मा को छूने वाली नहीं है। तो जैसे कि कपिल मुनि देवहूति को कहते हैं कि सदाम प्रसंगा मम वीर संबित भवंती हृदय करण रसायन कथा, ऐसे सुनना चाहिए कि कान और हृदय में कथा की दिव्यता का संचार हो, यानी कि सुनने की इच्छा आत्मा को होनी चाहिए। आत्मा को ये भौतिक शरीर मिला है और भौतिक विभागों को सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो आत्मसमर्पण करना, यानी कि देह समर्पण और आत्मसमर्पण दोनों में अंतर बन जाता है। फिर भी देह समर्पण भगवान की ये माइक प्रवृत्ति की शक्ति है और आत्मा भगवान की अंतरंग शक्ति की प्रवृत्ति, दोनों की शरणागति इसी तरह अलग अलग प्रकार की बताई है। अंतरंग शक्ति, तो अंतरंग शक्ति में अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। हाँ, और मूल स्वरूप में जो सेवा होती है तो वो गोलोक वृंदावन वाली सेवा हो जाती है। जबकि भौतिक देह के द्वारा आत्मसमर्पण करते हैं, यानी कि मुक्त हुए पहले की स्थिति में, तो इनको वैकुंठ प्राप्ति होती है। लेकिन ये दोनों को जो अनुभव है, भक्ति का अनुभव, तो उसकी इच्छा का पोषण, जो संतोष, उसकी इच्छा का संतोष बराबर है कि देखो मैं वैकुंठ में गया, मुझे भगवान की शास्त्री मुक्ति चाहिए थी, मुझे भगवान बहुत आकर्षक हैं, बहुत इनके पास ऐश्वर्य पड़े हैं, वो सारे ऐश्वर्य मुझे भी मिले, तो वो शास्त्री मुक्ति। तो शास्त्री मुक्ति होते ही उसको तुष्टि होती, तुष्टि, और वहां भगवान के साथ रहने को मिलता है, संतोष मिलता है, पुष्टि पोषण मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान का सानिध्य सामीप्य मुक्ति में मिलता है। तो चार चार प्रकार की मुक्ति पाए हुए सकाम भक्तों, यानी कि भौतिक कामना होते हुए भी वो भगवान के पास जा सकता है। ये चित्रकेतु इत्यादि राजा, महान राजा हुए, काफी इनकी इच्छाएं थी, और शंकर शरण के लोक में जाते हैं और वहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शंकर शरण भगवान जा, अभी तू सारी पृथ्वी पर का राजा बन और भोग, भोग भोगते हुए भी तू मुझे भूलेगा नहीं, क्योंकि भक्ति का प्रकार है, भोग भोगते हुए भी तू मुझे भूलेगा नहीं। जबकि इंद्र जैसे देवता भोग भोगते हुए कभी कभी भूल जाते हैं भगवान। तो शरणागति की अवस्था देखो, वृत्रासुर जो बना चित्रकेतु, तो उसकी शरणागति कितनी होनी चाहिए, जबकि इंद्र की शरणागति वो इस प्रकार की नहीं है। इसको सत्ता की चुनौती भगवान कृष्ण ने दे दी तो सत्ता के मारे भी शरणागत हुआ। इच्छा है कि मैं बना रहूं ये लड़का तो मेरा बाप निकला कहेंगे, राइट, स्वीकार लेते हैं। ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान के छोटे स्वरूप में ही इनको शरणागत हुए ऐसे। तो ये उदाहरण है कि भौतिक अवस्था होते हुए भी शरणागति यदि लेते हैं, लेकिन तीव्र भक्ति की आवश्यकता होती है और उसमें ये सारे क्रमानुसार उसका विकास होता है। लेकिन जो आत्मसमर्पण, जो आत्मा को ही भगवान की सेवा में डालना चाहते हैं, तो वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन में जाएंगे, वहां विशुद्ध आत्मा के अलावा कोई नहीं जा, न किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं होती। आत्मा पूर्णता से भगवान की शरणागत होता है, वो शरणागति में भौतिक देह होते हुए वो कष्ट में यदि आता है तो भगवान को धन्यवाद देता है। तत्ते अनुकंपां सु समीक्षणमाना बृंजानम एव आत्मकृतम विपाकम रद वाग वत्पूर विदतम नमस्ते जीवे तये समुक्ति पदे सदाय भाव। जीते जी मुक्ति के पद के लिए वो व्यक्ति लायक होता है जो अपने पूर्व विपाक से यदि कुछ उसे भोगना आता है तो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आपकी कृपा से ये कुछ टोकन मिल रहा है, हाँ मैं फरियाद नहीं करता, मैं उसे सहन कर लूंगा, आप बड़े कृपालु हैं, नहीं तो हमारा विपाक के अनुसार हमें यदि जो भोगना आता है इसी जन्म में आएगा तो कितना सारा भोग, हमें तो कल्पना ही नहीं। तो इस तरह वो भक्त बिना फरियाद वो सब कुछ सहन बनता है और खुशी से भोग लेता है जो भी विपाक है। तो ये तो मुक्ति के पद के लिए लायक हो गया। जो फरियाद नहीं करता है वो मुक्त बनेगा, जो फरियाद करेगा वो डटा पड़े रहेगा, यानी भौतिक अवस्था में। भक्त लोग फरियाद नहीं करते, यदि कोई फरियाद करता है तो समझो ये चक्कर में है कोई। तो ये चीज आवश्यक है शरणागति के लिए, ये चाहे वो भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए भगवान के पास आता है या सर्व कामना इसे कहते हैं और निष्काम है या मुक्ति की भी कामना करता है, तो हमेशा उसे भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान की तीव्र भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। तो ये भागवत सिद्धांत है और हमें इसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई आत्मा को समर्पण करना चाहता है, कोई देह को समर्पण करना चाहता है, तो हमें ये आत्मनिवेदन में बताते हैं। आत्मनिवेदन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का है और द्वारका में रुक्मिणी देवी के आचरण में भी कभी कभी आत्मनिवेदन पाया जाता है। रुक्मिणी लक्ष्मी है और वैकुंठ और द्वारकापुरी समान है, तो वहां चार प्रकार की मुक्ति। तो रुक्मिणी का जो भाव है भगवान की पत्नी होते हुए भी वो भक्ति में बनी रहती है और खास करके विग्रह सेवा में। रुक्मिणी भगवान के विग्रह की सेवा करती थी, पूजा करती थी, अर्चना इत्यादि सब कुछ। तो ऐसे विग्रह की सेवा में जो भाव है वो आत्मनिवेदन का उदाहरण बताती है। लक्ष्मी स्वयं भगवान को आत्मनिवेदन कर रही है, उसका उदाहरण रुक्मिणी ने बताया है। राधा रानी का गोलोक वृंदावन में ऐसा भाव जो हमेशा समर्पित है वो आत्मनिवेदन कहलाता है। क्यों नहीं? वो भगवान को समर्पित है, भगवान के लिए ही है। लेकिन गोलोक वृंदावन में राधा रानी का जो भाव है वो आत्मनिवेदन से भी परे है। जहां भगवान उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाते, सामान्यतः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त सैव भजाम्य हम। तो जब राधा रानी भगवान की सेवा कर रही है तो भगवान भी राधा रानी को ऐसा ही प्रत्युत्तर देंगे। लेकिन ये बहुत विशुद्ध भाव जहां भगवान की ये अंतरंग शक्ति, भगवान की सिर्फ आनंद की स्त्रोत्र के रूप में वो काम कर रही है राधा रानी। राधा रानी में स्वयं के लिए कुछ नहीं है, वो भगवान की ही अंतरंग शक्ति है, भगवान इन पर निर्भर है। तो यहां भगवान की अंतरंग शक्ति आश्रयदाता कहलाती है। तो भगवान के आनंद को भी आश्रय लेना पड़ता है। राधा रानी पर निर्भर करता है, जबकि लक्ष्मी वहां स्वयं के समर्पण की बात कर रही है। वो भगवान की नित्य सेविका बनने की चाहना कर रही है। और वैकुंठवासी फिर भी भगवान कभी कभी बिना पूछे चले जाते हैं वैकुंठ से, वो घबराती रहती है। जबकि यहां राधा रानी भगवान चले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता उसके लिए। कैसे चले जाए मैं देखू तो सही, चाहे वो चंद्रावली के पास जाए, हम ऐसे रूठेंगे उसको आना ही पड़ेगा, इसकी बराबरी नहीं हो सकती। ओ नित्य रूपा कहलाती है भगवान की, नित्य रूपा, नित्य स्वरूपिणी शक्ति। तो किसी को कोई प्रश्न है? अभी भी आप भक्ति ही परेशान अनुभव विरक्ति तीनों का अनुभव करोगे। समय हो चुका है अनुभव करने का। प्रश्नों को मारो गोली, ये अनुभव करो बहुत हो गए। श्री प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। आज शाम को यहाँ पर एक प्रोग्राम है भजन संध्या का, टाइम है उसका 7 बजे से 8:30 बजे तक, और उसमें जो गायक है मुकुंद दत्तपुर जी, ACBSP पुपा डिसाइपल श्यामानंद प्रभु। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस संध्या भजन संध्या को अटेंड करें। हरे कृष्णा। श्यामानंद प्रभु
आज सूखी नहीं है हलाना
हरे कृष्ण
Thank you. अपने हाथ से
नहीं हमने।